पहचान वे इबारतें जो हमने खुद लिखी थीं। सूर्यकांत बाली। जगदीश चंद्र बोस भारत के बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रयोग किया और साबित किया कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों और पशु पक्षियों की तरह प्राण होते हैं। वे भी मनुष्यों व पशु पक्षियों की तरह हर्ष शोक से प्रभावित होते हैं तथा मान अपमान के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। उन्होंने एक दिन दो पौधे रोपे। रोज वे एक पौधे की खूब तारीफ करते, उसे पुचकारते, खूब फलने फूलने का आशीर्वाद देते। दूसरे पौधे को हर रोज कोसते, दुत्कारते और मानो शाप देते रहते कि तू न फूलेगा, न ही फलेगा और बस यूं ही उजड़ जाएगा। नतीजा क्या हुआ? जिस पौधे को वैज्ञानिक बोस पुचकार और आशीर्वाद दे रहे थे, वह क्रमशः लहलहा उठा, खूब फूला, खूब फला। जिस पौधे को वह लगातार दुत्कार रहे थे, रोज कोस रहे थे, वह मुरझा गया, उभरा ही नहीं, फिर फूलता कहां से, फलता कहां से? अगर यकीनन पौधे भी मनुष्यों की तरह प्राणवान और संवेदनशील होते हैं, तो इसमें क्या शक है कि पुचकारे और दुलारे जाने पर मनुष्य भी पौधे की तरह खिल उभर सकता है और दुत्कारे कोसे जाने पर वह भी अधमरा होकर मरणासन्न हो सकता है। जो बात पौधों के लिए सच है, पशु पक्षियों के लिए सच है, मनुष्यों के लिए सच है, वही बात मनुष्यों के समाजों, जातियों और राष्ट्रों के लिए भी सच है। आखिर कैसे कोई समाज, कैसे कोई देश एक बड़े नेता की उद्दाम, उदात्त और प्रेरणा से भर देने वाली वाणी सुनकर खड़ा हो जाता है? और कैसे कोई समाज और देश जब लगातार बरसों, दशकों, सदियों तक उस वाणी को नहीं सुनता, तो वह मर सा जाता है, कहीं खो जाता है, भुला दिया जाता है? कैसे कोई कृष्ण, कोई तीर्थंकर, कोई चाणक्य, कोई बुद्ध, कोई शंकराचार्य, कोई समुद्रगुप्त, कोई महाराणा प्रताप, कोई शिवाजी, कोई कबीर, कोई तुलसीदास, कोई नानक, कोई महात्मा फुले, कोई बंकिम, कोई तिलक, कोई महात्मा गांधी, कोई अंबेडकर, कोई जयप्रकाश मुर्दा समाज में जान डाल देता है, तो कैसे इनमें से कोई आवाज सुनने को नहीं मिलती तो समाज रेंगना शुरू कर देता है? वह छुआछूत के नशे का शिकार हो जाता है, अपने राष्ट्र शरीर को टुकड़े टुकड़े करने का खूंखार शौक पाल लेता है, इतना संवेदन शून्य हो जाता है कि वह अपने को चुभोई जा रही गुलामी की सुई की चुभन को भी महसूस नहीं करता। जिस पौधे को एक खाटी प्रयोग के तहत दुदकार और कोसकर जगदीश बोस ने पाया कि वह पौधा सूखकर काटा हो गया और फिर खत्म हो गया, वैसे ही पिछले करीब 350 वर्षों से इस देश की प्रतिभा पर शासन करने वाले पश्चिमी विद्वानों, उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों और उनके भारतवंशी मानस पुत्रों ने इस देश के कोमल मन को इतना कोसा है, उसे इतना धिक्कारा दुत्कारा है, उसे छोटा समझने को इतना मजबूर किया है, उसे इतना पतित, दीन, दरिद्र साबित किया है कि हम भारतवासी अपनी निगाह में खुद ही गिर गए हैं। हमें वह कहा गया जिसे कहने की कोई जरूरत कतई नहीं थी। हम पर वे चीजें थोप दी गई जो हमने ना कभी की थी और ना कही थी। हमारे भीतर वे अवगुण तलाश दिए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। कुछ गुण तो हमारे अंदर भी होंगे, कुछ बात तो हमारे में भी होगी कि यूनान, मिस्र, रोमा इस जहां से मिट जाने के बावजूद हमारी हस्ती नहीं मिटी। पर उन गुणों पर, उन खूबियों पर, उन खासियतों पर खड़िया पोत दी गई। हमारे उन तमाम मील पत्थरों पर जहां सही इबारत लिखी थी, उसे मिटाकर पता नहीं क्या लिख दिया गया। हमारे एक मील पत्थर पर लिखा था संस्कृत, उसे मिटाकर वहां लिख दिया गया अंग्रेजी। हमारे एक मील पत्थर पर लिखा था बंगाली, एक पर लिखा था हिंदी, एक पर लिखा था पंजाबी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, डोगरी, कश्मीरी, सिंधी, सिरायकी। सब पर खड़िया पोत कर लिख दिया गया अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी। हमारे एक मील पत्थर पर लिखा था कालिदास, इसे मिटाकर वहां लिख दिया गया शेक्सपियर। हमारे एक मील पत्थर पर लिखा था कुचिपुड़ी, उसे मिटाकर वहां लिख दिया गया रॉक। एक पर लिखा था वीणा, उसे मिटाकर वहां लिख दिया गया गिटार। यानी हमारे हर मील पत्थर पर कुछ न कुछ हमने लिखा ही था, पर उसे मिटा दिया गया या बिगाड़ दिया गया। एक पर हमने लिखा था शंकराचार्य, उसका अर्थ वहां लिख दिया गया बौद्धों की समाप्ति। एक पर लिखा था कबीर, उसके पास एक इबारत लिख दी गई हिंदू या मुसलमान। और अपने इन मील पत्थरों के सहारे हम अपने जिस भारतवर्ष नामक राष्ट्र को पाने के लिए बढ़ रहे थे, और जब हमें वह मील पत्थर मिला जिस पर हमें हजारों सालों से बताया जा रहा था कि लिखा होगा भारतवर्ष, पर जब हम वहां पहुंचे तो लिखा मिला इंडिया। और जब हमने अपने उस इंडिया को अपना भारतवर्ष बनाने की आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमें नतीजा मिला इंडिया और पाकिस्तान। और जब बचे खुचे इंडिया को हमने फिर से भारतवर्ष बनाने के मील पत्थर गाड़ने का काम शुरू किया तो अचानक जमीन में से एक मील पत्थर निकला, हम द्रविड़ हैं, हम हिंदी और उत्तर भारत का आधिपत्य नहीं सहेंगे। अचानक एक और पत्थर जमीन में से निकला जिस पर लिखा था हम फला हैं और भारत से अलग होना चाहते हैं। ऐसी ही इबारतों वाले कुछ और पत्थर भी निकल आए और हम उन्हें पढ़ने को मजबूर थे। तो दो बातें हुई, मील पत्थर पर अपने आप कुछ नहीं लिखा जाता, उस पर प्रयत्न पूर्वक लिखा जाता है। वे अपने आप जमीन में से नहीं निकल आते, उन्हें कोशिश करके गाड़ना पड़ता है। अगर हमें एक खास तरह के मील पत्थर पढ़ने को मिले हुए हैं और थोड़ी सी जमीन खोदने पर एक खास तरह के मील पत्थर वहां हमें मिल जाते हैं, तो जाहिर है भारत के मील पत्थरों को बिगाड़ने की, उनकी दुर्गति करने की और कुछ खतरनाक मील पत्थरों को जमीन के भीतर भविष्य में निकालने के लिए गाड़ने की कोशिश सफलतापूर्वक की जा चुकी है। दूसरी बात, हम इन नकली मील पत्थरों को पढ़कर उन्हीं में मगन रह जाएं, उबर ही ना पाए, हमारे दिल दिमाग और भावना व सोच वैसे ही बन जाए, इसका पूरा इंतजाम किया जा चुका है। यानी यूनान मिस्र रोमा की तरह हम भी इस जहां से मिट जाएं, इसका खुलासा और खासा मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। हमारे इतिहास में कुछ चीजों को अद्भुत विचित्र व्याख्याओं के जरिए हुआ है और यह काम इतिहास के जरिए हुआ है। हमारे इतिहास में कुछ चीजों की अद्भुत विचित्र व्याख्याओं के जरिए हुआ है, कुछ अति महत्वपूर्ण चीजों को दरी के नीचे दबा देने के जरिए हुआ है, कुछ अनावश्यक चीजों को बेजा महत्व देने के जरिए हुआ है। इतिहास तो तथ्यों और घटनाओं का एक बेजान सिलसिला होता है, उसकी रचनात्मक व्याख्या कर उसके सहारे ऊपर चढ़ने की रस्सी हम उसे बना सकते हैं, तो उसकी अभिशप्त व्याख्याएं कर उसे गले का फंदा भी हम बना सकते हैं। हमें हमारे इतिहास की ऐसी ऐसी अभिशप्त व्याख्याएं सुनाई गई कि हमारा ही इतिहास हमारी ही गर्दन में फंदा बनाकर बांध दिया गया है। नमस्कार करने को मन करता है प्रबंध काव्यों और पुराणों को लिखने वाले मुनि कवियों को। कैसे सारे देश में घूम घूम कर वे इस देश के इतिहास की मीठी स्मृतियों को, हमारी अद्भुत जातीय घटनाओं को, हमारे विलक्षण आंदोलनों को, जीवन के प्रति क्रमशः विकसित हुए हमारे दृष्टिकोण को और उसकी कई तरह की व्याख्याओं को लोगों के बीच गाथाओं, उपमाओं, दृष्टांतों की सहायता से सुना गए, ऐसा सुना गए कि हमें अपना सारा इतिहास आज भी याद है। और ऐसा याद है कि कितना पानी सिर के ऊपर से गुजर गया पर हमारी हस्ती मिटाए नहीं मिटी। पर हमारे पश्चिमी शोषक जो हमें सिखाने का गुरूर लेकर आए थे, पर घोर अहंकार के मारे जिन्हें अपने अलावा किसी की कोई बात ठीक ही नहीं नजर आती थी, हमें समझाने लगे कि हमें तरीके से अपना इतिहास लिखना भी नहीं आता। फिर उन्होंने हमारा इतिहास लिखने का दंभ किया और उसी दंभ में हमारे मील पत्थरों से मनमाना खिलवाड़ करने का छल वे कर गए। वे चूंकि सयाने थे, छली थे, इसलिए अपनी पढ़ाई और अपने संस्कारों के जरिए हमें उन नकली मील पत्थरों को ही असली मानकर पढ़ने का चश्मा भी पहना गए। तो समझदारी किसमें है, वही चश्मा पहने रहा जाए या भारत के मील पत्थरों पर की गई पुताई को पोंछकर जरा उस इबारत को पढ़ा जाए जो हमने ही लिखी थी खुद अपने हाथों से लिखी थी।